नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत में एजुकेशन लोन 1,10,000 करोड़ रुपए का हो गया है। यह भी पूरे साल का आंकड़ा नहीं, इस साल जनवरी से लेकर अक्टूबर के बीच भारतीय छात्रों ने 1,10,000 करोड़ रुपए के लोन लिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का यह आंकड़ा है, जिसमें कहा गया है कि एजुकेशन लोन में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। इसमें से 65% लोन विदेशों में पढ़ाई के लिए लिए गए। छात्र औसतन 40 से 60 लाख के लोन ले रहे हैं। सबसे ज्यादा लोन अमेरिका जाने के लिए लिया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि पिछले 5 साल में 2023-24 के बीच एजुकेशन लोन में सबसे अधिक उछाल देखा गया है। हिंदू बिजनेस लाइन की इसी साल जून के महीने की एक रिपोर्ट है कि एजुकेशन लोन के लिए छात्र 10 से 15% ब्याज चुका रहे हैं। कई बार बैंक इसलिए भी लोन नहीं देते क्योंकि उन्हें पता होता है कि कम सैलरी की नौकरी मिलेगी और ब्याज चुकाना मुश्किल हो जाएगा, लोन भी नहीं चुकेगा। आज हम इसी पर बात करेंगे कि गुजरात और पंजाब में छात्र विदेश जाने के लिए क्यों होड़ कर रहे हैं और क्यों दूसरे प्रदेश के बच्चे पिछड़ गए हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि जनवरी 2023 तक उनके पास जो सूचनाएं हैं उसके हिसाब से 15 लाख छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं। 2022-23 में 21-22 की तुलना में एजुकेशन लोन में 17% का उछाल आया है। कोविड के बाद अमेरिका जाने वाले छात्रों की संख्या में 35% की वृद्धि हुई है। अक्टूबर 22 से सितंबर 23 के बीच अमेरिकी दूतावास और काउंसलेट ने 1,40,000 छात्रों को वीजा जारी किया। भारतीय छात्रों की वजह से दुनिया की कितनी ही यूनिवर्सिटियों की दुकान चल रही है। विदेश में पढ़ना विदेश में बसने की पहली सीढ़ी है। जिस किसी के पास पैसा है लोन ले सकता है, छात्रवृत्ति हासिल कर सकता है, वो पढ़ने के लिए विदेश जा रहा है। उनके हिसाब से वे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं क्योंकि भारत में पढ़ाई का स्तर गिर गया है। उनके माँ बाप भले ही सोशल मीडिया पर भारत को विश्वगुरु बताते रहें, मगर भीतर भीतर बच्चों को बाहर भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ने पहुंचते रहते हैं। इनकी आंखों में उदासी साफ देखी जा सकती है। पंजाब का कोई ना कोई कोना हर दिन अपनों से जुदा होता रहता है। कई माँ बाप जानते हुए भी कि उनका जीवन अब अकेले का होने वाला है, किसी तरह बच्चों को भारत से बाहर भेज रहे हैं। पंजाब और बेंगलुरु से ऐसे माँ बाप का एक संगठन भी चलता है जिसका नाम है नृपा, नॉन रेजिडेंट इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन। 1998 में बना यह संगठन माँ बाप को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहारा देता है। इसकी अपनी वेबसाइट भी है। ये वो माँ बाप है जिनके बच्चे बाहर चले गए और जिनके लौट कर आने की उम्मीदें कमजोर पड़ती चली गईं। 2011 से 2018 के साल का आंकड़ा आप देखेंगे, तब भी 1,25,000 भारतीय भारत की नागरिकता छोड़ते रहे हैं। 2018 के बाद से इसमें काफी तेजी आती है। वैध तरीके से जाने वाले भारतीयों की संख्या भी बढ़ती है, साथ साथ अवैध तरीके से जाने वालों की, जो हमने 26 दिसंबर के वीडियो में आपको बताया। सबकी आंखों में एक ही सपना है, कमाना है, अच्छा जीवन जीना है और विदेश में बस जाना है। हालांकि भारत की 6 ऋतुओं का अपना ही आकर्षण है और कश्मीर में ही चिनार के पत्ते जब रंग बदलते हैं तो अमेरिका और कनाडा की पतझड़ से पहले की रंगीनी को मात देते हैं। इसके बाद भी कनाडा और अमेरिका में जब फॉल आता है, पत्तों के रंग लाल और पीले होने लगते हैं, मुंह से वाव निकलता है। वाव अंग्रेजी का शब्द है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं मुंह बा देना, वाव के समय वही होता है, देखने वाला चकित रह जाता है। जनवरी 2023 में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया में अपनी मातृभूमि से बाहर रहने वाली सबसे बड़ी प्रवासी आबादी भारतीयों की थी, लगभग 2 करोड़। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2011 से 16 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी, जिसमें 2022 में 1,83,741 लोग शामिल हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी। अमेरिका कनाडा के मकान, मोहल्ले, दुकानें, अस्पताल, सब कुछ इस वीडियो में भी आपको व्यवस्थित नजर आएंगे। गरीबी इधर भी है लेकिन अवसर और अफसरों की गुणवत्ता भी इधर ही है। जैसा कि इन देशों में जाकर बस चुके और बसने का जुगाड़ लगाने वाले भारतीय ही बताते हैं, कुछ तो हुआ है कि भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या बढ़ी है। 2020 में 85,256 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी, उसके अगले साल यह संख्या यानी 2021 में 1,63,370 हो गई। 2022 में तो पूछिए मत, लगता है उस साल नागरिकता छोड़ने की भगदड़ मच गई। 2022 में 2,25,620 लोगों ने भारत की नागरिकता को टाटा बाय बाय कर दिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को गले लगा लिया। यह सारा आंकड़ा विदेश मंत्रालय का है, इसी साल अगस्त में संसद में रखा गया है। इस वीडियो का मकसद यह बताना नहीं कि अमेरिका और कनाडा में जो भी है वो अच्छा ही है, कम से कम मैं तो नहीं मानता, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें लगा कि अमेरिका और कनाडा में भारत से तो बहुत अच्छा है और वे झट से भारत छोड़ गए। कुछ अच्छे और प्रतिबद्ध शिक्षकों को छोड़ दीजिए, जिनकी संख्या भारत के कॉलेजों में कुछ में होती है। भारत के ज्यादातर कॉलेज की पढ़ाई घटिया है, कहीं क्लास में टीचर नहीं है, टीचर हैं तो पढ़ाने नहीं आता, कहीं परीक्षा नहीं और कहीं समय पर डिग्री नहीं। जब तक हिंदी प्रदेश का बच्चा पढ़कर निकलता है वह किसी लायक नहीं रहता। यह सवाल उनका भी होना चाहिए कि क्यों वे विदेशों में पढ़ाई और नौकरी के अवसरों का पीछा नहीं करते हैं। लेकिन पहला सवाल यह होना चाहिए कि इस पलायन के पीछे जो कारण है उस पर बात कौन करेगा और बात कब होगी। खराब कॉलेज, खराब नौकरी, यही हिंदी प्रदेश की नियति है। क्या युवाओं ने सपने देखने भी बंद कर दिए? कब तक वे अच्छी यूनिवर्सिटी की तलाश में अमेरिका या कनाडा भागते रहेंगे? यह पटना के गंगा घाट पर अरुण कुमार की क्लास है, यहां बैठे छात्रों को देखकर उनका कायल हो जाता हूं। एक अदद सरकारी नौकरी के लिए अपना कितना कुछ झोंक देते हैं। इनके इसी जुनून को देखकर लगता है कि अगर इनके स्कूल और कॉलेज में टॉप लेवल की पढ़ाई हुई होती, अच्छे टीचर मिले होते, तो यही छात्र दुनिया भर में छा गए होते। इन छात्रों में प्रतिभा और लगन की कोई कमी नहीं, मगर इनके जीवन में 15 साल तक खराब स्कूल और घटिया कॉलेजों का लंबा सिलसिला चलता है, जिससे इनकी प्रतिभा और सपनों को बहुत नुकसान पहुंचता है। सभी के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मानना है कि अगर राजनीति में धर्म को लेकर सनक पैदा ना की गई होती तो हिंदी प्रदेशों के लाखों युवाओं का टाइम ही नहीं कटता। इसलिए अभी और दो बड़े मुद्दे आ रहे हैं मंदिरों के, जिसके फेर में भारत की दो पीढ़ी का पूरा जीवन निकलने वाला है। हिंदी प्रदेश के युवाओं को आप किसी जगह पर मंदिर का सपना दे दीजिए और किसी जगह पर फैक्ट्री का, मुझे यकीन है ये मंदिर का सपना चुन लेंगे। मुझे हिंदी प्रदेश के युवा कभी गलत साबित नहीं करते, इसलिए मुझे उन पर गर्व होता है। मेरी बात इस वीडियो में दिख रहे छात्रों के संदर्भ में नहीं है, और हो सकता है ये छात्र मेरी बात से सहमत भी ना हो, लेकिन मेरा यही मानना है कि इनके जैसे युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है, अच्छी सैलरी की नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन धर्म की राजनीति ने हिंदी प्रदेश के युवाओं को जो हिंदू सुख दिया है उसका हिसाब लगाना किसी अर्थशास्त्री के बस की बात नहीं। इन छात्रों को अपने इस खराब कॉलेजों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिनकी वजह से वे हिंदू सुख महसूस करने लायक हो पाए। इसके बाद भी इन्हें बताया तो जा ही सकता है कि इन्हीं के पीढ़ी के युवा कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए चुपचाप निकल लिए। हम भूल जाते हैं किसी देश में गोदी मीडिया ने JNU पर किस तरह हमला किया, PhD का मजाक उड़ाया, कहा टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है, जबकि उसी PhD के लिए लोग लाखों का लोन ले रहे हैं, घर छोड़कर कनाडा, अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि उन देशों में अभी भी रिसर्च की मान्यता है और अच्छी रिसर्च होती है। आपकी नजरों में JNU को देशद्रोह का अड्डा बताकर इन्हीं गोदी मीडिया के परिवार के लोग और नेताओं के लोग अमेरिका, कनाडा निकल लिए। आखिर क्यों भारतीय छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी की तरफ पलायन कर रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद करोड़ों रुपए की सैलरी वाली नौकरी मिल ही जाती हो। वहां गए छात्रों का भी कहना है कि पढ़ाई अच्छी होती है, सुविधाएं अच्छी हैं, काफी कुछ सीखने को मिलता है, अपने प्रोफेसर से कुछ भी बोल सकते हैं। भारतीय छात्र कहां कहां नहीं जा रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के अलावा आयरलैंड, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, रूस, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पहुंच रहे हैं। सबसे अधिक छात्र महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पंजाब से जा रहे हैं। इसके बाद गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु का नंबर आता है। हिंदी प्रदेशों के नाम सूची में नीचे हैं। विदेश जाना आसान नहीं, अंग्रेजी जानने की परीक्षा पास करनी होती है। इसके लिए छात्र पीटीई, जीआरई, आईईएलटीएस और टॉफिल की परीक्षाएं देते हैं। कोचिंग पर 40,000 से 50,000 रुपए खर्च करते हैं। पंजाब से लेकर गुजरात में इनकी भरमार हो गई है कोचिंग सेंटर की। कनाडा इन दो राज्यों पर काफी ध्यान दे रहा है क्योंकि यहां के छात्रों से ही कनाडा की यूनिवर्सिटी भर रही है। 2018 में नारायण मूर्ति ने कहा था, 70 घंटे काम करने का लेक्चर देने वाले नारायण मूर्ति, कि 80% भारतीय युवा किसी नौकरी के लायक नहीं है। क्या आप मानेंगे ये बात? तब उन्होंने कहा कि यहां की शिक्षा व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। पंजाब के दक्षिण मालवा का एक शहर है बठिंडा। पिछले कुछ सालों में यह शहर एक आईएलटीएस हब की तरह जाना जाने लगा। ये बठिंडा शहर का अजीत रोड है, वहीं का वीडियो है। भले ही शहर की यह सड़क दो इलाकों को जोड़ती हो, पर विदेश जाने की चाहत रखने वाले हजारों छात्रों के लिए यह सड़क बठिंडा से सीधे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मिडिल ईस्ट और साइप्रस जाती है। बठिंडा की 100 फीट रोड, पावर हाउस रोड और अजीत रोड मिलकर एक ऐसा त्रिकोण बनाते हैं जिसमें हजारों की संख्या में IELTS कोचिंग सेंटर चलते हैं। लाखों की संख्या में इनमें पंजाब ही नहीं, पूरे देश से युवा छात्र कोचिंग लेने के लिए आते हैं। 3 महीने की कोचिंग की फीस 10,000 से 80,000 तक हो सकती है, बल्कि इससे ज्यादा भी। ये सड़कें अगर कोचिंग सेंटर और छोटे ढाबों और दुकानों से भरी हैं, तो इनसे सटे रिहायशी इलाकों में पेइंग गेस्ट और हॉस्टल की भरमार। विदेश जाने की कोचिंग का खर्च सिर्फ सेंटर की फीस भरकर पूरा नहीं हो जाता, पीजी या हॉस्टल का किराया मिलाकर विदेश जाने की लंबी प्रक्रिया में केवल कोचिंग का कुल मासिक खर्च एक आम किसान परिवार की औसत मासिक आय से भी बहुत ज्यादा हो जाता है।
सो कॉस्टिंग दी जे आप गल करिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दी बेसिक, जिदा बच्चा जो भी किसी भी कोचिंग लेंदा, किसी भी जिहड़ा अपने टेस्ट दी कोचिंग लेंदा, सो एवरेज अगर वो टेस्ट दी फीस प्लस 3 मंथ्स दी असी कोचिंग दी गल करिए, तो जिहड़ी कॉस्टिंग है अराउंड अबाउट 40,000 to 50,000 दोवें चीज़ां दी कॉस्टिंग आ जाती है। उस तो बाद जो प्रोसैस स्टार्ट हुंदा है, जिस विच बच्चे दी 1 साल दी फीस दे नाल लिविंग एक्सपेंसिस, असी गल करांगे पहला कैनेडा दी। कैनेडा दे विच 1 साल दी जिहड़ी फीस है, एवरेज फीस है जिहड़ी, वो तकरीबन 9 तो शुरू हो के 9 लैक्स, 9 लैक इन इंडियन रुपीस तो शुरू हो के तकरीबन 12 लाख तक जिहड़ी है चली जाती है। एंड उस दे नाल ही जिहड़ा लिविंग एक्सपेंसिस, जिन्हों कैनेडा दे विच असी कहने आ GIC, ग्रंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जिस दे विच स्टूडेंट दे अकाउंट दे विच $10,200 जिहड़े डिपॉजिट हुंदे सी, जो 31 दिसंबर तक सी। लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट ने उन्हों चेंज करके आफ्टर 1 January 2024 वो 20,635 कनेडियन डॉलर जो करते हैं। सो उस तो अलावा एक मेडिकल होंगे स्टूडेंट का प्लस एम्बेसी फीस, जे तुसी इन्हों 31 दिसंबर तो पहला कंपेयर करोगे तो वो जी एक कॉस्टिंग सी टिकट तक की स्टूडेंट की, उसके वीजा कॉस्ट वट एवर जिन्या भी कॉस्ट सी, सो उसकी कॉस्टिंग 18 to 20 लाख की जी कॉस्टिंग होंगी सी। लेकिन उ स्टूडेंट सेम अगर कैनेडा दे विच अप्लाई करेगा 1 January तो बाद, सो ओदी कॉस्टिंग राउंड अबाउट 1 साल दी फीस GIC एंड अदर चार्जेस दे नाल 25 to 30 लाख दा जेड़ा ओदा बजट ओदे विच बन गया।
कैनेडा को पता है कि भारत से यहाँ आने की होड़ मच गई है, इसलिए वहां जाने वाले छात्रों के रहने सहने का खर्चा भी अगले साल यानी 1 January से डबल कर दिया गया है। कैनेडा भेजने के लिए माँ बाप पहले से ज्यादा खर्चा करेंगे। इस होड़ का किसानों पर बुरा असर पड़ेगा, जमीन बेचकर और कर्ज उठाकर कनाडा भेजना पड़ेगा। कई बार छात्रों को कोर्स के बारे में सही जानकारी नहीं होती, यूनिवर्सिटी और वहां पढ़ाए जाने वाले विषय और उससे जुड़े रोजगार के बारे में पता नहीं होता। जो डिग्री किसी काम की नहीं होती उसके लिए भी लाखों रुपए फूंक देते हैं, क्योंकि डिग्री बस बहाना है या जरिया है वहां बस जाने का। 19 July 2023 के द ट्रिब्यून अखबार में आप सुखमित भसीन की रिपोर्ट पढ़िए। सुखमित लिखते हैं कि बठिंडा के गांव महमा सरकारी की आबादी 1200 है। यहां के करीब 100 युवा पहले ही और मुल्कों में जाकर बस चुके हैं। गांव में कई बुजुर्ग मां बाप अकेले रह गए हैं। यहां के हर तीसरे घर से एक बच्चा उच्च शिक्षा के लिए विदेश गया है। भसीन लिखते हैं कि यहाँ के किसान मवेशी सोना बेचकर खेत जमीन बैंकों में गिरवी रखकर विदेशी संस्थानों में अपने बच्चों के लिए सीट सुरक्षित करवाना चाहते हैं। यहाँ पर आभूषणों के बदले ऋण देने वाले निजी फाइनेंसियर्स की तादाद भी बढ़ने लगी है। मेहमा सरकारी गांव के निवासी मनोज शर्मा ने कहा है, जो ट्रिब्यून में छपा है, कि एक समय हमारा गांव बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों वाले लोगों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब लगभग 100 युवा अध्ययन वीजा पर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और साइप्रस चले गए। यह कनाडा के मॉन्ट्रियल का वीडियो है, लेकिन कहानी मैं उत्तरी कनाडा की बता रहा हूं। जिस वक्त मॉन्ट्रियल में यह वीडियो लिया गया, उस वक्त वहां का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था। कनाडा सरकार इस साल 9,00,000 छात्र विदेशों से लाना चाहती है। 40% छात्र भारत के होंगे और इनकी फीस कनाडा के छात्र जितनी फीस देते हैं उससे 4.5 गुनी अधिक फीस होगी। भारतीय 4.5 गुनी अधिक फीस देते हैं। कनाडा ने जब से यूनिवर्सिटी का बजट कम किया है, यूनिवर्सिटी ने अपना खर्चा पूरा करने के लिए गुजरात और पंजाब में अपना बाजार खोज लिया है। यहाँ से छात्र इसलिए आते हैं क्योंकि पढ़ाई के बाद कनाडा में बसने का रास्ता खुल जाता है। यहाँ के कॉलेज नहीं चाहते कि अकेले भारत पर निर्भर रहें, इसलिए दक्षिण अफ्रीका में भी अभियान चलाया जा रहा है। यह ऑन्टेरियो के नॉर्दर्न कॉलेज का वीडियो है। इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट छपी है। नोरिमित्सु ओनिशी की रिपोर्ट में बताया गया है कि टोरंटो से कार से 8 घंटे लगते हैं यहां पहुंचने में। ऑन्टेरियो में भयंकर ठंड पड़ती है, फिर भी वहां के सरकारी कॉलेजों में भारतीय छात्रों की भरमार है। नॉर्दर्न कॉलेज में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या 96% से अधिक हो गई है। इस कॉलेज में ग्रामीण ऑन्टेरियो से कहीं ज्यादा छात्र गुजरात और पंजाब के हैं। 2014 में यहां मात्र 40 अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे, इस साल 6,000 से अधिक हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि एकदम से दूर दराज के इस कॉलेज में भारत के छात्र पहुंचे हैं, जहां कनाडा के ही ज्यादातर लोग नहीं जाते। यहां इतनी ठंड पड़ती है कि कुल्फी जम जाए, फिर भी भारत के छात्र यहां भीड़ लगाकर पहुंच रहे हैं। कनाडा में बसने के अलावा एक कारण यह भी है कि इन छात्रों का, इनके माता पिता का भारत की यूनिवर्सिटी में भरोसा नहीं रहा। मिडिल क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो फॉरवर्ड कर रोज माहौल बनाता है कि भारत सुपर पावर हो गया और चुपके से अपने बच्चों को कनाडा फॉरवर्ड कर देता है। हिंदी प्रदेश के युवाओं को यही खेल समझ जाना है और खुद इससे निकलने की तैयारी करनी है, क्योंकि विदेश जाना, वहां पढ़ना और वहां बस जाना, अब इसे कोई भी गलत नहीं कहता। बस सावधान रहना है कि कोई एजेंट आपको ठग ना ले। फर्जी सर्टिफिकेट लेकर भेजेगा तो फिर वहां से वापस आना पड़ेगा। पंजाब और गुजरात के युवा लगे हुए हैं अंग्रेजी की परीक्षा निकालने में। इन्हें पता है कि कनाडा में वीजा की वेटिंग लंबी है, तो चलो इंग्लैंड की तरफ। ब्रिटिश उच्चायोग के अनुसार जून 2022 तक यूके द्वारा एक वर्ष में लगभग 1,20,000 प्रायोजित अध्ययन वीजा भारतीय छात्रों को जारी किया गया और इनमें से 40% पंजाबी छात्र हैं। इससे पहले कनाडा पढ़ाई के लिए सबसे बड़ा ठिकाना था। 18 नवंबर 2022 के ट्रिब्यून में सुखमित भसीन ने लिखा है कि एक वीजा सलाहकार ने उनसे कहा कि कनाडा के लिए देरी और बढ़ती अस्वीकृति दर ने छात्रों को निराश किया है, जो आजकल इंग्लैंड का विकल्प चुन रहे हैं, क्योंकि इसकी सफलता दर 100% है और छात्रों को IELTS परीक्षा के प्रत्येक घटक में केवल 6 बैंड स्कोर की आवश्यकता होती है। वीजा रिजेक्ट होने पर फीस भी जब्त हो जाती है, इसलिए छात्र चाहते हैं कि वहां ट्राई मारा जाए जहां वीजा का मिलना पक्का हो। यूके में विश्वविद्यालय छात्रों को तरह तरह की छात्रवृत्तियां भी प्रदान कर रहे हैं। भारत से आ रही इस भीड़ को देखते हुए इंग्लैंड ने वीजा मानकों में कुछ बदलाव किए हैं। वहां पर पढ़ाई के बाद 2 साल तक काम करने की अनुमति दी जा रही है, ताकि काम कर लोन का खर्चा निकल आए और ज्यादा संख्या में भारतीय छात्र वहां पहुंचे।
वो कौन कौन अफोर्ड कर सकता है? मैं दसना चाहना कि जो स्टूडेंट्स बाहर जाते ने उन्होंने ज्यादा वो स्टूडेंट्स ने जो मिडिल क्लास तो बिलोंग करते हैं या पुअर फैमिलीज तो बिलोंग करते हैं, सो उन्हां लई एक बहुत वड्डा सैटबैक है। रिच जिहड़े हैगे ने उह अफोर्ड कर सकदे ने स्टडीज़, उन्हां लई अज वी स्टडीज़ जिहड़ियां ने बाहर इंटरनेशनल कोई इन्नियां कॉस्ट नहीं करदियां, लेकिन जो एक एवरेज पुअर स्टूडेंट है, जो एक जिहनूं आपां कहिंदे साडे इत्थे दो तरह दे रूलर एंड अर्बन, ਸੋ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਜਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਬਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਰੇਸ਼ੋ ਘਟਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਰਬਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਨਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸੇ ਲੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾ ਇੱਕ ਕਾਮ ਬੋਗਸ IELTS ਸੈਂਟਰੋ ਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਉਨ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਨਏ ਸੈਂਟਰ ਖੁਲਤੇ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਇਤਨੀ ਰੱਦੀ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਭਾਰਤੀਆ ਲਾਖੋਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। IELTS ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲੋਂ ਮੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੇ ਸਤਰ ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। LKG ਸੇ 12ਵੀਂ ਕਕਸ਼ਾ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹਮਾਰੇ ਸਕੂਲ ਛਾਤਰੋਂ ਕੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਟੈਸਟ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋੜ ਮੇ ਉਹਨੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਤਾ ਛਾਤਰੋਂ ਕੋ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ। ਹਾਲ ਕੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇ ਕਈ ਛਾਤਰੋਂ ਕੋ ਲੌਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਬ ਸਾਂਸਦ ਜਯਦੇਵ ਗੱਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਰਸ਼ੋਂ ਮੇ ਕਿਤਨੇ ਭਾਰਤੀਯ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਸੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਏ ਗਏ, ਉਸ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਸਕੇ ਆਂਕੜੇ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਯ ਕੁਸ਼ਲ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਮੇ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਯੇ ਵੋ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਤਰ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਕਾਮ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਮੇ। ਅਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਕੋ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਮੇ ਕਾਮ ਦਿਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਏਜੰਟ ਬਣਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕੇ ਆਈਡੀਆ ਕੋ ਪੁਰਾਤਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਆ। ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਔਰ ਪਲਾਇਨ ਕਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਸੰਘ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਖੂਬ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। 2015 ਮੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੇ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਅਬ ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋ ਸਰਵਿਸ ਹਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। 2015 ਮੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਆ ਥਾ। ਆਪ ਹੀ ਬਤਾਈਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਿਹਾਰ ਮੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਲਾਇਨ ਕੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਜਬ ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਿਓ ਮੇ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੇ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾ ਆਈਟਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਸ਼ਕ ਸੇ ਭਾਰਤ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੋਂ ਸੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ੋ ਮੇ ਕਾਮ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਮੇ ਜਾਤੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਹੋਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਪਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਨਰਸਿੰਗ ਸੇ ਲੇਕਰ ਤਮਾਮ ਕਾਮ ਕੇ ਲੀਏ ਭਾਰਤੀਆ ਖੁਦ ਸੇ ਜਾ ਤੋ ਰਹੇ ਥੇ, ਅਬ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇਗੀ। ਰਾਜਿਓ ਮੇ ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਨੇ ਕਾ ਵਾਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਸਤਰ ਪਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਮੋੜ ਹੈ। 27 ਦਸੰਬਰ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀਯ ਮੇ ਇਸਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ੋ ਮੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੋ ਇਸਸੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਇਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੁਛ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਕੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕਰ ਨਿਕਾਲ ਆ ਜਾਏ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੇ ਖੇਤੀ ਕੇ ਲੀਏ 10,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਂਗੇ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਓਂ ਕੇ ਲੀਏ ਲੋਕ ਮਾਂਗੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 40,000 ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਕੋ ਇਸਰਾਇਲ ਭੇਜਨੇ ਕਾ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਕੇ ਕਾਰਨ 90,000 ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੌਟ ਗਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 10,000 ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਕੋ ਇਸਰਾਇਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਸੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਿਕਾਲ ਲੀਏ ਭਾਰਤ ਵਹਾਂ ਭੇਜ ਰਹਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਹ ਯੁਵਾਓਂ ਕੋ ਘਰ ਮੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿਲਾਨੇ ਮੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਕੋ ਇਸਰਾਇਲ ਭੇਜਨੇ ਕੀ ਡੀਲ ਕਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਮੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕੀ ਦਰ 9% ਸੇ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀਯ ਮੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ PLFS ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਂਕੜੋਂ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ 57% ਲੋਕ ਸਵਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇ ਲਗੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਨਮੇ ਸੇ 18% ਸੇ ਅਧਿਕ ਲੋਕ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯਮ ਮੇ ਲਗੇ ਹੈ। 21% ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਯੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮੇ ਨੌਕਰੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ। ਯਹਾਂ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿਸੀ ਕਾ ਸਪਨਾ ਸੰਕਰੀ ਗਲੀ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ, ਚੌਰਾਹੇ ਪਰ ਭਯੰਕਰ ਜਾਮ ਔਰ ਹੌਰਨ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ युवाओं का सपना अटक जाता है। आज की ही रिपोर्ट है, ईपीएफओ के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल संगठित क्षेत्र में नए काम का सृजन 10% घटा है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि जनवरी से अक्टूबर 2023 के बीच 90 लाख कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़े हैं, उसके पहले के साल में 1 करोड़ कर्मचारी जुड़े थे। संगठित क्षेत्र में काम नहीं मिलने का एक मतलब यह भी है कि काम करने वालों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी। यही नहीं, ईपीएफओ से जुड़ने वाले 18 से 28 साल के युवाओं की संख्या भी घटी है। इसका मतलब हुआ युवाओं को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, पहली बार काम पाने वालों को काम नहीं मिल रहा। भारत में नौकरी की हालत खराब है, कम सैलरी की नौकरी में ही संतोष करना होगा और शहरी जीवन की अपनी मुश्किलें भी हैं। दिहाड़ी काम का ही चलन बढ़ रहा है। 26 दिसंबर के हिंदू अखबार में एक विश्लेषण छपा है, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राहुल मेनन ने लिखा है कि आंकड़ों के हिसाब से भले ही बेरोजगारी कम बताई जाती है, लेकिन असली पहलू यह है कि जिनके पास अच्छी डिग्री है, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, उनके बीच बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है। इससे संकेत मिलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में अभी भी अकुशल मजदूरों और असंगठित सेक्टर का बोलबाला है। यही नहीं, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलने का इंतजार भी लंबे समय तक करना पड़ता है। भारत की शिक्षा अगर बची है तो कोचिंग के चलते बची है। हर परिवार बच्चों का एडमिशन 2 जगह करा रहा है, स्कूल में और उसके बाद कोचिंग में। हर विषय की कोचिंग होने लगी है। इसका मूल्यांकन होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी और स्कूलों का स्तर कितना गिरा है कि बिना कोचिंग के किसी का काम नहीं चलता। इस बीच युवाओं को निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। स्कूल से लेकर कॉलेज और अन्य जगहों पर प्रधानमंत्री के कटआउट लगा दिए गए हैं। आप चाहें तो प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ले सकते हैं। भले आपकी डिग्री किसी काम की नहीं, मगर क्या पता ये सेल्फी काम आ जाए। तभी भारत सरकार जगह जगह सेल्फी कटआउट लगा रही है। आखिर मोदी जी ने किया है, कुछ सोचकर ही किया होगा। यही नहीं, अब सफल होने का मतलब यह नहीं कि आप युवा कितने सफल हैं। एक तरफ YouTube पर लगाम लगाने की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर यह प्रचार पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री के YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या 2 करोड़ हो गई। इस मामले में उन्होंने विपक्ष के 8 नेताओं को पीछे छोड़ दिया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार भले ना मिला हो, लेकिन 2 करोड़ सब्सक्राइबर होने का जश्न बीजेपी मना रही है। पंजाब और गुजरात के छात्रों को शायद पता चल गया है कि ये अब कभी ठीक नहीं होगा, तो निकलो यहां से। हिंदी प्रदेश के युवाओं को तय करना है कि गुजरात और पंजाब के युवाओं की तरह अमेरिका और कनाडा के लिए निकलना है या यहीं पड़े पड़े हिंदू सुख में डूबे रहना है। तय आप कर लीजिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार।